ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। सैयदना हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया। तूफान नूह के मौके पर काबतुल्लाह की इमारत जो फरिश्तों ने बनाई थी वो आसमान पर उठा ली गई और वो जगह खाली थी, वहाँ टीला सा था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अला नबियना वालिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप यहाँ काबतुल्लाह की तामीर करें। पहले जो इमारत थी उसकी बुनियादें तो फरिश्तों ने वहाँ बनाई थी, अंदर मौजूद थी। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने उन बुनियादों को ज़मीन के अंदर से खोद कर नुमाया किया और हज़रत इब्राहीम अला नबियना वालिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि इन्हीं बुनियादों के ऊपर आप काबतुल्लाह की तामीर करें। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अला नबियना वालिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से काबतुल्लाह की तामीर का सिलसिला शुरू किया और हज़रत के साहबजादे हज़रत इस्माईल अला नबियना वालिस्सलातु वस्सलाम इस तामीर के काम में आपकी मदद फरमा रहे थे। उसी मौके पर हज़रत इब्राहीम अला नबियना वालिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी दुआएं की जिनको कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने नकल फरमाया है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वईद यरफ़ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल, याद करो उस वक्त को जब हज़रत इब्राहीम काबतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे और हज़रत इस्माईल इस काम में आपकी मदद कर रहे थे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। और इस काम को अंजाम देते हुए दोनों बाप बेटे दुआएं कर रहे थे। पहली दुआ ये थी कि हमारे परवरदिगार, हमारे इस अमल को तो अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूल अता फरमा, इन्नक अंतस समीउल अलीम, बेशक आप अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाले और उनके दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। देखिए हज़रत इब्राहीम अला नबियना वालिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ में हमारे लिए बड़ी इबरत है। ये काम हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे थे और हज़रत जिब्राइल की निगरानी में, सुपरविज़न हज़रत जिब्राइल का था और दोनों बाप बेटे, दोनों नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, हज़रत जो है इस्माईल ज़बीहुल्लाह हैं, वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये अमल अल्लाह ताला की बारगाह में शर्फ़ कबूल हासिल करता है या नहीं। वह हम लोगों को भी इससे सबक लेते हुए कोई भी दीनी काम जब कोई आदमी करे तो उस पर फख्र न हो, उस पर इतराहट न हो, पता नहीं ये अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होता है या नहीं, हमें डरते रहना चाहिए। आगे रब्बना वजालना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारे परवरदिगार तो हम दोनों को तेरे अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करने वाला बना दे। मुस्लिम ये इस्लाम से है, इस्लाम का माना है اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکا دینا. ایک غلام کو جب آقا کوئی حکم دے تو اس غلام کو چاہیے کہ وہ آقا کے حکم پر سر جھکاتے ہوئے اس کو بجا لاوے. یہ نہ پوچھے کہ یہ کیوں, یہ جو کیوں پوچھے بغیر اس کو بجا لانا, اسی کا نام ہے اسلام, سر تسلیم خم کر دینا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, ارے اللہ تو ہماری اولاد میں سے پوری امت ایک ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. کہ امت محمدیہ جو ہے اس کے دنیا میں وجود میں لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر دعا فرمائی تھی, سماکم المسلمین, حضرت ابراہیم ہی نے ہمارا نام کیا رکھا, مسلم رکھا. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ارے ہمارے پروردگار تو ہم کو عبادت کے طریقے بھی سکھلا. تیرا یہ گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں, اس گھر کا طواف کیسے کریں گے, ہم تیری عبادت کیسے کریں گے, وہ بھی تو ہمیں بتلا. اور آگے پھر اخیر میں دعا جو فرمائی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, ارے ہمارے پروردگار تو اس ہماری اولاد کو جس کو تو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنائے گا امت مسلمہ, انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجیو. جو اس رسول کا کام کیا ہوگا, یتلو علیہم آیاتک, کہ وہ ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے. بس یہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم, یہ الفاظ کی تعلیم, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں جن کاموں کو انجام دینے کے لیے بھیجا تھا ان میں پہلا کام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کے الفاظ سکھلائیں. حالانکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ تو خود پیدائشی عرب تھے, عربی زبان ان کی مادری زبان تھی, اور وہ دور جس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, رسول بنا کر کے بھیجا, وہ تو جو ہے فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا اس زمانے میں. لیکن پھر بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے, جب تک کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ نبی نہیں بتلائیں گے وہاں تک آدمی اس کو سیکھ سکتا نہیں. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ قرآن کے لیے سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے, بغیر استاد کے کوئی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا. ایک آدمی عربی کا کتنا ہی ماہر ہو, وہ یوں سمجھے کہ میں تو عربی زبان کا بڑا ماہر ہوں, مجھے قرآن پڑھنے کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. حضرت حکیم الامت فرما دے سورہ بقرہ کی پہلی آیت, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ابھی الف لام میم ہے اس کے سامنے کر دو, کیا پڑھے گا وہ تو ملا کر کے پڑھے گا, الگ الگ نہیں پڑھے گا. یہ قرآن کے اندر جو حروف مقطعات ہیں, ویسے تو حروف جو ہیں حروف تہجی, ان کے ذریعے سے کلمات بنائے جاتے ہیں اور ان کو جوڑ کر پڑھا جاتا ہے, لیکن قرآن میں کچھ مقامات پر ایسے کلمات جو اللہ نے حروف اتارے ان کو جوڑ کر نہیں بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے, اسی لیے نام ہے اس کا حروف مقطعات. تو جب تک کہ استاد نہیں بتائے گا یہ اس طرح پڑھنا ہے, ایک الف لام میم وہاں سورہ الم ترا کئی ففال ربو کا بھی اصحاب الفیل کے شروع میں بھی ہے, لیکن وہاں الف لام میم نہیں پڑھتے, وہاں کیا پڑھتے ہیں, الم ترا کئی ففال. تو گویا جب تک کہ اس کو پڑھنا سکھلایا نہیں جائے گا, استاد نہیں بتلائے گا وہاں تک نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قرآن کے پڑھنے کا طریقہ سکھلاتے تھے اور صحابہ آپ سے سیکھتے تھے. بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی 70 آیتیں سیکھیں, 70 صورتیں, 70 صورتیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سیکھیں. آپ کے سامنے آپ کے کئی صحابہ نے آپ سے इसको इस तरह सीखा कि आपको खुद को भी इत्मीनान हुआ। और तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक चार आदमियों से सीखो, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, सालिम मौला अबा हुज़ैफा, उबई इब्ने काब और मुआज़ इब्ने जबल। वह हुज़ूर खुद एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सनद दे रहे हैं कि उन्होंने मुझसे सीखा और वह इस काबिल हो गए हैं कि उनसे लोग कुरान सीखें। बड़े एहतमाम थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया वहाँ कूफा से, इराक से। उसने आकर के, उनके दौरे खिलाफत का वाकया है कि मैं वहाँ एक ऐसे आदमी को छोड़ करके आया हूँ जो कुरान पाक जबानी लोगों को जो है ये लिखवाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दीन के मामले में बड़ी एहतियात बरतते थे, इसलिए जब ये सुना फौरन उनका हाथ कोड़े पर गया और पूछा कौन। उसने कहा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। जब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला का नाम लिया तो कोड़ा हजरत उमर के हाथ से नीचे गिर गया और फरमाया अगर वो हैं तो उनको ऐसा करने का हक है। फिर उन्होंने किस्सा सुनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोजाना ईशा की नमाज के बाद मुसलमानों के मामले में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से साथ बैठ करके मशवरा करते थे और मैं भी वहां मौजूद होता था। देखो मशवरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से करते थे, लेकिन हजरत उमर ताबीर ही फरमा रहे हैं हजरत अबू बकर से मशवरा करते थे और मैं भी वहां मौजूद होता था। ये तवाज़ु हजरत सहाबा का अंदाज अदब। हम लोग तो किसी से मशवरा, हम ऐसे ही पहुंच गए हमारे साथ में हम अपनी तरफ जोड़ लेते हैं, ये फर्क देखिए। कहा एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसमें देर हुई और देर से उठे तो देखा मस्जिद के अंदर कोई आदमी नमाज में, वहां तो उस जमाने में रोशनी तो होती नहीं थी, कुरान नमाज के अंदर पढ़ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आवाज को सुनकर उनके सुनने के लिए खड़े हो गए और देर तक सुनते रहे। और वो थे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। हुजूर ने फरमाया आखिर में कि जो आदमी ये चाहता हो कि कुरान को उसी तरह तरोताजा हालत में सुने जैसा कि वो आसमान से उतरा है, तो उसको चाहिए कि वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में जावे। तो बहरहाल कुरान का सीखना सिखाना बड़ा पाकीजा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बड़ी बशारतें सुनाई हैं। बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान पाक को सीखें और सिखलाएं। दोनों काम करने हैं, खाली सीख करके बैठा नहीं रहना है, सीखने के बाद दूसरों को भी सिखाना है। हजरत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला इब्न हबीब सोलमी बहुत बड़े ताबी और बहुत बड़े कारी, जितनी भी किरात की सनदें हैं कारियों की उनके वास्ते से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। वही इस रिवायत को हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि हुजूर के इसी इरशाद ने मुझको यहाँ बिठाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, हालांकि वो बड़े माहिर थे तमाम उलूम के, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों को, बच्चों को कुरान पाक सिखलाने के अंदर अपने आप को वक्फ कर दिया। बहुत पाकीज़ा अमल है, बड़ा अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है और हमें अपने तमाम बच्चों को कुरान के सिखलाने का बहुत एहतमाम करना चाहिए। बल्कि तारीख इब्न खल्लदून के मुकदमे में अल्लामा इब्न खल्लदून ने लिखा है कि हमारे असलाफ के यहाँ बच्चों को सबसे पहले कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता था, उसके बाद दूसरी तालीम होती थी और उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसके जहन को खोल देते थे। अभी गुजर ये शुरा हुई थी, उस वक्त हम वहाँ दिल्ली गए थे देवबंद जाते हुए, तो वहाँ मंसूर भाई के यहाँ ठहरे, तो वहाँ एक डॉक्टर साहब से मंसूर भाई मुमताज़ ने मुलाकात कराई। उन्होंने वहाँ जो अपने कारी साहब थे जो मदरसा तजवीदुल कुरान वाले कारी सुलेमान साहब, वो तो इंतकाल हो गया मुद्दत ही, उनके बेटे, तो उस मदरसे में उन्होंने शुरू किया है कि वो जो है ना ये असरी तालीम बच्चों को देते, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहले बच्चे को हिफ्ज़ कराओ। और वो कहते हैं जिस बच्चे को भी हिफ्ज कराया गया उसका दिमाग और हाफजा खुल जाएगा और वो 3 साल की तालीम दे करके उसको जो है इतना उम्दा सलाहियत पैदा कर देते हैं कि आगे वो आईएसआईसी वो ऑफिसर होते हैं वो जो इंडियन सिविल सर्विसेज के उसके लिए आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा आप चाहें तो आप क्या इसको शुरू कर आप मैं मुझे फिर याद नहीं अगर आप याद दिलाए तो दारुल एहसान में वहाँ मावापुर में उसको शुरू करा सकते हैं। वो कहते मैं तैयार हूँ आने के लिए आप जहाँ कहेंगे आऊँगा मुझे यूँ कहा था उन्होंने। बहरहाल ये बड़ा मुबारक सिलसिला है और हमारे घरों में कुरान का बड़ी अहतमाम के साथ सीखने सिखाने का सिलसिला होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसकी बड़ी ताकीद फरमाई। हजरत सहाबा बड़े अहतमाम से खुद भी सीखते थे अपनी औलाद को भी सिखलाते थे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।